लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संघर्षों की स्थिति में हम ध्रुवीकरण और लोक लुभावनवाद के खिलाफ संवाद और मैत्री के साहसी निर्माता बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 18 जुलाई को संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
करी फ्रतेली ए सोरेले, बोंजोर्नो,
प्रिय भाइयों एवं बहनों सुप्रभात।
लतेजामेंटो दी जेसु के ओसर्वियामो नेल वांजेलो दे ला लिटुर्जिया ओडिएर्ना ci aiuta a cogliere due aspetti importanti della vita.
Gesù ka manubhav jisko hum aaj ki dhamvidhi ke susamachar paath mein gaur karte hain hame jeevan ki do mahatvapurn baaton ko samajhne mein madad deta hai. Pehla vishram. प्रेरित मिशन काम से वापस लौटते हैं तथा उत्साह के साथ अपने काम की चर्चा शुरू करते हैं, किंतु यीशु स्नेह से प्रेरितों को निमंत्रण देते हैं, तुम लोग अकेले ही मेरे पास निर्जन स्थान में चले आओ। वे विश्राम हेतु निमंत्रण देते हैं। संत पापा ने कहा,
Così facendo, Gesù ci dà un insegnamento prezioso.
ऐसा करते हुए यीशु हमें एक बहुमूल्य शिक्षा देते हैं। शिष्यों को देखकर यीशु उनके सफल उपदेश के लिए खुश जरूर होते हैं, किंतु वे उन्हें बधाई देने या उनसे प्रश्न करने में समय व्यतीत नहीं करते, बल्कि उनके शारीरिक और आंतरिक थकान की चिंता करते हैं। संत पापा ने कहा, और वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वे उन्हें एक खतरे की चेतावनी देना चाहते हैं जो छिपकर हमारे पास आता है। कर सकने के उन्माद के खतरे में अपने आप को पड़ने देना, सक्रियतावाद के जाल में फंसना, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है हमारे काम का परिणाम, जिसका श्रेय हम खुद को देते हैं। कितनी बार कलीसिया में भी ऐसा ही होता है, हम व्यस्त रहते, भाग दौड़ करते और सोचते हैं कि सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर है, और अंत में हम यीशु को दरकिनार करने के खतरे में पड़ते हैं। इस तरह हम अपने आप को ही केंद्र में रख लेते हैं। यही कारण है कि यीशु अपने मित्रों को अपने साथ थोड़ा विश्राम करने का निमंत्रण देते हैं। यह केवल शारीरिक आराम नहीं है, बल्कि हृदय का भी आराम है, क्योंकि सिर्फ काम से अवकाश लेना पर्याप्त नहीं है, हमें सही में आराम करने की जरूरत है। पर इसके लिए किस तरह आराम किया जाए? संत पापा ने कहा, ऐसा करने के लिए आपको चीजों के बीच में वापस जाना होगा, रुकना और मौन रहना और प्रार्थना करना होगा, ताकि आप काम से अवकाश की यात्रा में न चले जाएं। यीशु भीड़ की आवश्यकताओं से नहीं भागते, बल्कि हर दिन सबसे पहले प्रार्थना के द्वारा अपने आप को प्रेरित करते और पिता के साथ संयुक्त करते थे। संत पापा ने कहा, उनका स्नेहिल निमंत्रण, थोड़ा विश्राम कर लो, हमारे साथ रहे। आइए हम कार्य कुशलता से सचेत रहें, उन्माद की दौड़ से रुकें जो हमारी कार्य सूची को निर्देशित करता है। हम रुकना सीखें, आंखों से लोगों को देखने के लिए मोबाइल बंद करें, मौन रहें, प्रकृति पर चिंतन करें, ईश्वर के साथ वार्तालाप फिर शुरू करें। हालांकि सुसमाचार बतलाता है कि यीशु और शिष्यों ने जैसा चाहा था वैसा आराम नहीं कर सके। लोगों ने उन्हें देख लिया था और सभी ओर से उनके पास आ गए। ऐसी स्थिति में यीशु को तरस हो आई। इस तरह दूसरा आयाम है सहानुभूति। यह ईश्वर का तरीका है। ईश्वर के तरीके हैं सामिप्य, सहानुभूति और कोमलता। कितनी बार हम सुसमाचार में, बाइबल में इस वाक्य को पाते हैं कि वे दया से द्रवित हो गए। तरस खाकर यीशु ने अपने आप को लोगों के लिए समर्पित किया और पुनः शिक्षा देने लगे। यह विरोधाभास के समान लगता है, किंतु यथार्थ में ऐसा नहीं है। वास्तव में केवल वही हृदय जो अपने आप को जल्दबाजी में बहकने नहीं देता तरस खा सकता है, अर्थात अपने आप में एवं चीजों को करने में नहीं खो जाता और दूसरों पर, उनके घावों और जरूरतों पर ध्यान दे पाता है। तरस खाना चिंतन करने से उत्पन्न होता है। संत पापा ने कहा कि यदि हम सचमुच आराम करना सीख जाते हैं, तब हम सच्ची सहानुभूति प्रकट कर सकेंगे। यदि हम चिंतनशील नजर रखेंगे, तब हम उन लोगों के लालची रवैये के बिना अपनी गतिविधियों को जारी रखेंगे जो सब कुछ को रखना और उपभोग करना चाहते हैं। यदि हम प्रभु से जुड़े रहेंगे और अपने आप में अचेत नहीं रहेंगे, तब हमें जो करना है उसके पास हमारी सांस को रोकने और हमको नष्ट करने की शक्ति नहीं होगी। हमें हृदय की पारिस्थिति की क्या आवश्यकता है जो विश्राम, चिंतन और सहानुभूति से बना हो। हम ग्रीष्म के समय में इसका लाभ उठाएं। इसके बाद संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा, अब आइए हम माता मरियम से प्रार्थना करें जो मौन रहें, प्रार्थना की तथा चिंतन किया, और हम उनके बच्चों पर हमेशा कोमल स्नेह से प्रेरित होती हैं। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini, un Savi Maria,
et concepita de Spiritu Sancto.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostrae.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने दक्षिणी अफ्रीका में हो रही हिंसा के लिए खेद प्रकट करते हुए कहा,
In quest'ultima settimana sono giunte purtroppo notizie di episodi.
दुर्भाग्य से पिछले सप्ताह से हिंसा की खबर सुनाई पड़ रही है, जिसने दक्षिणी अफ्रीका में हमारे बहुत सारे भाइयों की स्थिति को बहुत बिगाड़ दिया है, जो महामारी के कारण पहले से आर्थिक और स्वास्थ्य की कठिनाइयों से परेशान है। संत पापा ने कहा,
Unitamente ai vescovi del paese,
मैं देश के धर्माध्यक्षों के साथ जिम्मेदार अधिकारियों से हार्दिक अपील करता हूँ कि वे शांति के लिए कार्य करें एवं जरूरतमंद लोगों की मदद हेतु अधिकारियों के साथ सहयोग करें। दक्षिण अफ्रीका के सभी बच्चों के बीच सौहार्द के पुनः जन्म की इच्छा को ना भुलाया जाए। देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड के लोगों के प्रति अपना सामिप्य व्यक्त किया, जो विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित हैं, तथा प्रार्थना की कि प्रभु मृतकों का स्वागत करे और परिवार वालों को सांत्वना दे, उन सभी को बल प्रदान करे जो मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जो गंभीर क्षति से परेशान हैं। इसके बाद संत पापा ने क्यूबा के लोगों, खासकर उन परिवारों की याद करते हुए उनके प्रति अपना सामिप्य व्यक्त किया जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वे उन्हें शांति, वार्ता और एकात्मकता में अधिक न्याय एवं भ्रातृत्वपूर्ण समाज के निर्माण में मदद दें। मैं क्यूबा के सभी लोगों से अपील करता हूँ कि वे अपने आप को कोबरे की उदारता की कुंवारी मरियम की ममता में संरक्षण में समर्पित करें, वे इस यात्रा में उनका साथ दें। तब संत पापा ने युवाओं का अभिवादन करते हुए कहा,
Saluto i numerosi giovani presenti.
मैं यहाँ उपस्थित युवाओं का अभिवादन करता हूँ, खासकर नोवा सिरी के संत अंतोनी ओराट्री, पार्मा में सभी संतों की रानी मरियम पल्ली, ब्रेशा में पौत्र हृदय पल्ली और संत सेवेरो में डॉन बोस्को ओराट्री दल के युवा। उन्होंने कहा, प्रिय युवाओं, सुसमाचार के रास्ते पर आप सभी को शुभ यात्रा। तब संत पापा ने क्रिस्तों की सहायिका मरियम के पुत्रों की नवशिष्याओं, विंचेंसा के धर्म प्रांत में कमिशानों और कंपोदोरो के प्रेरित यूनिट के विश्वासियों का अभिवादन किया। साथ ही उन्होंने पुलिया के युवाओं तथा संचार माध्यमों द्वारा देवदूत प्रार्थना में भाग लेने वाले सभी लोगों का अभिवादन किया और अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Auguro una buona domenica. Per favore, Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने पत्र लिखकर रोम के जेमेली अस्पताल प्रशासन और कर्मचारियों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया, जहां उन्हें हाल ही में एक निर्धारित सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे अस्पताल को एक ऐसी जगह के रूप में वर्णित करते हैं जो शरीर और हृदय दोनों की देखभाल करता है। संत पापा ने 15 जुलाई को लिखे एक पत्र में कहा, अस्पताल में भर्ती होने के बाद मैं आपके और आपके माध्यम से उन सभी लोगों के प्रति आभारी हूं और अपने स्नेही विचार को प्रकट करने की इच्छा महसूस करता हूं, जो जमेली अस्पताल बड़े परिवार का निर्माण करते हैं, एक भाईचारे का स्वागत और गर्मजोशी से देखभाल जिसने उन्हें घर जैसा महसूस कराया। रविवार 4 जुलाई को संत पापा अस्पताल में भर्ती हुए थे, जहां डॉक्टरों ने उनके आंतों की सर्जरी की। सफल ऑपरेशन और कुछ दिनों के स्वास्थ्य लाभ के बाद संत पापा फ्रांसिस 14 जुलाई को वाटिकन लौट आए। अस्पताल के निदेशक मंडल के अध्यक्ष प्रोफेसर कार्लो फ्रेटा पासिनी को संबोधित पत्र में संत पापा फ्रांसिस ने स्वास्थ्य देखभाल में मानवीय संवेदनशीलता और वैज्ञानिक व्यावसायिकता के महत्व को प्रमाणित किया। उन्होंने कहा कि जमेली अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां हर दिन हजारों लोग अपनी अपेक्षाओं और चिंताओं के साथ आते हैं। वहां शरीर की देखभाल के अलावा हृदय की देखभाल भी होती है। संत पापा प्रार्थना करते हैं कि यह देखभाल व्यक्ति की एक अभिन्न और चौकस देखभाल के माध्यम से परीक्षण के क्षणों में सांत्वना और आशा पैदा करने में सक्षम बने। अब मेरे दिल में दुख सहते हुए लोगों के इतने सारे चेहरे, उनकी कहानियां और दुखित परिस्थितियां मौजूद हैं। आगे चिकित्सा कर्मियों की सेवा की सराहना करते हुए संत पापा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनका काम न केवल नाजुक और चुनौतियों से भरा है, बल्कि दया का काम भी है, जिसके माध्यम से बीमार यीशु के संपर्क में आते हैं। संत पापा ने कहा, मैं आभारी हूँ कि मैंने इसे देखा, इसे अपने भीतर संजोया और इसे प्रभु के पास लाया। अंत में संत पापा फ्रांसिस ने निदेशक मंडल के अध्यक्ष एवं जमेली अस्पताल परिवार के सभी सदस्यों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया। उधर टोक्यो महामारी के बीच ओलंपिक खेल की तैयारी कर रहा है। संत पापा फ्रांसिस ने लोगों के बीच सद्भाव को मजबूत करने के लिए खेल के महत्व पर प्रकाश डाला। कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले से ही दुखित ओलंपिक कह चुके हैं। टोक्यो में कोविड-19 के प्रसार से बचने के लिए स्टेडियम में कोई दर्शक नहीं होगा।
स्टेडियमों में कोई दर्शक नहीं होगा, एथलीटों के बीच गले लगाने की अनुमति नहीं होगी, किसी भी संभावित संपर्क से बचने के लिए विजयी प्रतिभागियों को अकेले ही अपने गले में पदक डालने होंगे। ओलंपिक खेलों के स्थगित होने के एक साल बाद महामारी के कारण जापान खेल आयोजन को परस्पर विरोधी भावनाओं, खुशी और उदासी, गर्व और चिंता के साथ उत्कृष्टता का अनुभव करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ओलंपिक में संक्रामक विरोधी कठोर उपायों के कारण एक अभूतपूर्व विकास के साथ इसके प्रतीक परस्पर जुड़े 5 छल्ले अपने साथ लोगों के बीच भाईचारे और सद्भाव की भावना रखता है। एक संदेश जिसकी आज निश्चित रूप से बहुत आवश्यकता है, जबकि हम खुद को सब एक ही नाव में पाते हैं और कई कठिनाइयों के बीच अभी भी अप्रत्याशित परिणामों के साथ युग के एक अप्रत्याशित परिवर्तन का सामना करते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने बार बार युवा लोगों के लिए खेल की शैक्षिक क्षमता शामिल होने और निष्पक्ष खेल के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने जमेली अस्पताल में भर्ती होने के दिनों में भी हार के मूल्य पर शिक्षा दी। उन्होंने कहा, किसी भी व्यक्ति की महानता तब देखी जाती है जब वह खेल में हार जाता है। जीवन के खेल में भी ऐसा ही होता है। इस विषय पर संत पापा ने वर्ष की शुरुआत में गैजेटा के स्पोर्ट के साथ एक लंबे साक्षात्कार में कहा था, विजय में एक रोमांच होता है जिसका वर्णन करना और भी मुश्किल है, लेकिन हार में कुछ अद्भुत होता है। हार से भी सुंदर चीजें पैदा होती हैं, क्योंकि गलती की पहचान हो जाती है और छुटकारे की प्यास बुझती है। मैं यह कहना चाहूँगा कि जो जीतता है वह नहीं जानता कि वह क्या खो रहा है। सभी प्रकार के फ्रैक्चर और ध्रुवीकरण द्वारा चिन्हित इस समय में यह खेल हो रहा है। संत पापा ने ओलंपिक एथलीटों को विशेष याद दिलाया कि ओलंपिक खेल सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और शारीरिक मतभेदों पर काबू पाती है और लोगों को एकजुट करने का प्रबंधन करती है, जिससे वे एक ही खेल में भाग लेते हैं और एक साथ जीत और हार के नायक होते हैं। संत पापा की आशा है कि टोक्यो ओलंपिक प्रतिस्पर्धात्मक तनाव और एकता की भावना को मिलाने में सक्षम होंगे, सीमा को पार कर सकेंगे और कमजोरियों को साझा कर सकेंगे। आज पहले से कहीं अधिक चुनौती केवल स्वर्ण पदक जीतना नहीं है, लेकिन हर ओलंपिक एथलीट का सपना और लक्ष्य एक साथ मानव भाईचारे का पदक भी जीतना है। उधर उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में 5 गांवों में छापा मारकर बंदूकधारियों ने कम से कम 60 लोगों का अपहरण कर लिया। यह ताजा अपहरण जम्फरा राज्य में हुआ। यह बताया गया है कि मोटरसाइकिलों में सवार कम से कम 70 बंदूकधारियों ने 5 गांवों में घुसकर हवा में गोलियां चलाई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि अपराधियों ने ग्रामीणों का अपहरण करने और पास के जंगल में भागने से पहले कैसे दहशत फैला दी थी। हाल के महीनों में नाइजीरिया को सशस्त्र डकैतियों और फिरौती के लिए अपहरण में वृद्धि का सामना करना पड़ा है। अप्रैल में देश भर में बढ़ती अपराध दर को देखते हुए सांसदों ने राष्ट्रपति से देश में आपातकाल की स्थिति घोषित करने की मांग की थी। अपराध मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में किए जाते हैं, जहाँ सुरक्षा बल स्थिति से निपटने के लिए संघर्ष कर रही है। यूएन का कहना है कि उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया की विकट स्थिति उत्तर पूर्व के विद्रोहियों के कारण है, जिसने पिछले एक दशक में 3,50,000 लोगों की जानें ले ली हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।